जिस परमात्मा में देने की शक्ति है, क्या उसमें जानने की शक्ति नहीं होगी? हम इंतजार कर रहे हैं कि वह परमात्मा आएगा और हमारी जिंदगी बदलेगा, पर क्या पता वह परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा हो, हमारे एक्शन लेने का, हमारे कर्म करने का। स्वागत है आपका कर्म प्रधान में, एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जहां हमारा चर्चा का विषय है चेतना, एलियंस, भूत, साइकिक्स, परमात्मा, नास्तिकता और बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल टॉपिक्स। मैं हूं आपकी होस्ट कशिश गंभीर। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या मेरी वेबसाइट kashishgambhir.com पर, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का एपिसोड का टाइटल है राम कौन है और राम आएंगे का क्या अर्थ। तो देखिए, जो राम शब्द है उसके दो अर्थ हैं। पहला राम, जो कि निराकार राम है, वो राम कौन हुआ? जो हम में रमा हुआ है, जो हमारे रग रग में, हमारे जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, निराकार राम, जो हर जगह है, हर वस्तु में है, लिविंग बींग्स में भी है और नॉन लिविंग बींग्स में भी है, पूरी सृष्टि में है। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा राम का अर्थ है जो कि साकार रूप में श्री राम, जिनको हम प्रभु श्री राम बोलते हैं, आए थे त्रेता युग में, मतलब थर्ड साइकिल ऑफ टाइम में, जिसको हम त्रेता युग बोलते हैं। अभी कलयुग चल रहा है, फोर्थ साइकिल ऑफ टाइम चल रहा है। तो श्री राम, जो कि सीता के पति भी थे, जिन्होंने रावण का वध करा, वो त्रेता युग में आए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि राम आएंगे का क्या अर्थ है? क्या राम जी त्रेता युग से चलकर कलयुग में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सृष्टि का एक नियम है, लॉ है, जो कि खुद परमात्मा ने ही बनाया हुआ है, कि इस शरीर में जो भी जन्म लेता है, चाहे वो इंसान हो या इंसान का रूप धारण करे, परमात्मा ही क्यों ना हो, पर इस विनाशवान शरीर में जो भी जन्म लेता है, उसने एक ना एक दिन जाना ही है। तो श्री राम भी त्रेता युग में आए अपने विनाशवान शरीर में, और जब उनका वक्त आया तो वो चले गए, शरीर छोड़ दिया, चोला छोड़ दिया। तो आज हम कलयुग में किस राम की बात कर रहे हैं जो आएंगे? हम उस निराकार, उस फॉर्मलेस राम की बात कर रहे हैं जो हम में ऑलरेडी समाया हुआ है। और वो कैसे आएगा? सेल्फ रियलाइजेशन से, गॉड रियलाइजेशन से। मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, सही टेक्निक से अपनी आत्मा को अंदर ले जाना पड़ेगा, उसकी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तब गॉड रियलाइजेशन होगा, तब राम आएंगे। अब तीसरा सवाल आता है कि अगर श्री राम निराकार है तो राम मंदिर की क्या जरूरत? निराकार राम कैसे आ सकता है? जो सब जगह है, जो सब में है, जो मुझ में है, तुम में भी है, उसको हम चार दीवारी में कैसे बंद कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जो राम मंदिर बनवाया है हमने, वे राम जी को हमने घर दिया है। ये इंसान का घमंड है और उसकी गलत फहमी है कि इस इंसान ने उस परमात्मा को, जिसने कि पूरी सृष्टि को बनाया है और इंसान को भी बनाया है, इस इंसान ने उसको घर दिया है। अपना घर तो इंसान बना नहीं पा रहा, किश्ते दे रहा है, और परमात्मा को इसने घर दे दिया है बना के। सोचने वाली बात है, इतने संत आए, उन्होंने हमें सीख दी। कहते हैं हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, इसका क्या अर्थ है? हरि मंदिर, हरि का मंदिर ये शरीर है, इस शरीर में परमात्मा निवास करता है, हरि निवास करता है। ज्ञान रतन प्रगट होए, ये प्रकट कब होगा, ये रियलाइजेशन कब होगी? जब अवेकनिंग होगी, जब ज्ञान उत्पन्न होगा, अंदर से अवेकनिंग होगी। तो ये तो हमें संतों ने बता दिया, जो ऑलरेडी गॉड रियलाइज सोल्स हैं, जो एनलाइटेंड सोल्स हैं, उन्होंने हमें बता दिया कि हरि मंदिर तो ये शरीर है। हर होली स्क्रिप्चर में हमें सेम टीचिंग दी गई है, बाइबल में भी यही लिखा है, ये आर द टेम्पल ऑफ गॉड, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, और हमने उस परमात्मा को इसी में पाना है। तो अब सवाल क्या है कि राम मंदिर की क्या जरूरत? देखिए, जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, इंसान बनाता है अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी आस्था के लिए, और हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर भी हमने अपनी श्रद्धा के लिए बनवाया है। ये हमारा प्यार है, हमारी श्रद्धा है परमात्मा के लिए, श्री राम प्रभु के लिए, कि हमने राम मंदिर बनवाया है। पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर हम इस गलत फहमी में रहे कि श्री राम साकार रूप में यहां पर आ जाएंगे त्रेता युग से, ये हमारा जो मन है, जिसको मोस्ट पावरफुल कहा गया है इस दुनिया में, जिसने अच्छे अच्छे साधुओं को, संतों को गलत फहमी में डाल दिया, उनसे गलत काम करवा दिए, ये मन हमें इस इमेजिनेशन में डालता है कि त्रेता युग से चलकर यहाँ पर श्री राम आ रहे हैं। इस शरीर में जो आया वो अपने वक्त पर चला गया, अभी जो है निराकार रूप में है। राम है पर अपने निराकार रूप में है, और हम उस निराकार, उस फॉर्मलेस परमात्मा को चार दीवारी में बंद नहीं कर सकते। अगर वो चार दीवारी में बंद हो सकता है तो वो परमात्मा है ही नहीं। पर हमारे माइंड ने इसको एक लिमिटेड वे में देखना शुरू कर दिया कि हमने परमात्मा को घर दिया है। अरे, पूरी सृष्टि उसका घर है, ये पूरी सृष्टि श्री राम की है। अब हम आते एक चौथे सवाल पर कि अगर राम मंदिर बन गया, उसके बन जाने के बाद भी मस्जिदों और चर्चों में घुस कर लोगों को क्यों परेशान करा जा रहा है? हमें सबसे पहले ये विचार करना है कि स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि बहुत ही पहुंचे हुए थे, एनलाइटेंड थे, स्वामी दयानंद जी, कबीर जी और बहुत बड़े बड़े संत आए भारत में। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का ही हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के वक्त में वे इतने लोकप्रिय थे कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी लोकप्रिय थे, और लोग दूर दूर से चलकर आते थे उनके वचनों को सुनने के लिए, उनकी इज्जत करते थे, उनके वचनों की कद्र करते थे। और अगर विवेकानंदा जी चाहते कि एक हिंदू देश बनाना है जिसमें सिर्फ हिंदू मजहब हो, तो वो एक अनाउंसमेंट के साथ उसको बना देते। पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? पता है इन संतों में और हम में क्या फर्क है? कि ये संत जैसे स्वामी विवेकानंदा जी हैं, ये एनलाइटेंड थे। और एक एनलाइटेंड व्यक्ति को क्या समझ आता है? उसको ये समझ आता है कि परमात्मा सृष्टि के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। वे हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, बुद्धिस्ट में भी है, जैन में भी है। वे हर किसी जीवित और अजीवित वस्तु में है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से मुल्क से हैं, आप कौन से मजहब से हैं, आप आदमी हैं या औरत, आप बूढ़े हैं या बच्चे। वे तो बस है, वे सब जगह है, सब में है। वे परमात्मा, परम आत्मा, मतलब जो सुप्रीम सभी आत्माओं की आत्मा है, जिसको हम बोलते हैं परम आत्मा, सब में समाई हुई है, इस मंदिर में है, शरीर रूपी मंदिर में है। ये जो बंटवारा है, ये हम इंसानों ने करा है। पहले एक जमीन को हमने बॉर्डर्स बना के मुल्कों में बांट दिया, फिर अपने आप को हमने अलग अलग मजहबों में बांट दिया। आजकल तो लोग रंगों को, कलर्स को भी बांट रहे हैं। इंसान का अगर बस चले तो वो सूर्य और पानी को भी बांट दे, पर वह परम आत्मा, वह परमात्मा भेदभाव नहीं करता। ही इज अनबायस्ड। उसने सबके लिए इक्वली चीजें बनाई हुई हैं। परमात्मा का शुक्र है कि उसने हमें जल, वायु, पृथ्वी, आग, आकाश, धूप जैसी सभी अनमोल चीजें मुफ्त में दी हैं। इसको पहचानना और इसकी कद्र करना हम इंसान की जिम्मेवारी है। आज का एपिसोड यहीं तक ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस पॉडकास्ट कर्म प्रधान को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। अपना कर्म ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट kashishgambhir.com पर जाकर मेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब टैब के अंदर। और मैं आपको वीकली मेल्स भी भेजना शुरू करने वाली हूँ फेब्रुअरी से। तो धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्ते।